Krishna, Krishna, Hare Hare. जयमिष्टिपाद परमहंस परिवकाचार्य अशोत्तर श्री श्रीमद श्री भक्तिवदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जयमिष्टिपाद परमहंस परिवकाचार्य अशोत्तर श्री श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जयमिष्टिपाद परमहंस साक्षात वैराग्य मूर्ति श्रील घोर किशोरदास बाबाजी महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय विष्णुपाद परमहंस वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ बाबाजी महाराज की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास गुना छठ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की एकत्र हुए सारे भक्तों की जय। ग्रंथराशिमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 15 श्लोक संख्या 31 कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। देशे शुचो समय राजन संस्थाप आसनम आत्मनः स्थिरम सुखम समम तस्मिन् आसित ऋजु अंग ओमती। देशेषु चौ समय राजन संस्थाप आसनम आत्मनः स्थिरम सुखम समम तस्मिन् आसित ऋजु अंग ओमिति। देशेषु चौ समय राजन स्थिर सुखम सम तस्मिन् स्थिरम सुखम सम तस्मिन् आसीत ऋजु अंग ओमति। माता जी प्रभु जी दोहराए। दशेषु चो समय राजन संताप आत्मना स्थिरम सुखम समं तस्मिन् आसीत ऋजु अंगम ओमिति। दशेषु चो समय राजन संस्थाप आसन आत्मना स्थिरम सुखम समम तस्मिन् आसीत ऋजु अंगम ओमिति। दशेषु चो समय राजन संताप आसन आत्मना आसिता आसमिन आसित ऋजु अंग ओमिति। शब्दार्थ देशे स्थान पर शुचौ अत्यंत पवित्र समय समतल राजन हे राजा संस्थाप्य रख कर आसनम आसन पर आत्मना स्वयं को स्थिरम अत्यंत स्थिर सुखम सुखपूर्वक समम समतल तस्मिन् उस आसन पर आसीत बैठ जाएं ऋजुअंग शरीर को सीधा करके ओम वैदिक प्रणमंत्र वैदिक मंत्र प्रणव इति इस प्रकार। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की आवाज सबको मेरी आ रही है ना पीछे तक? ठीक है। तात्पर्य सॉरी अनुवाद है। राजन योग संपन्न करने के लिए किसी पवित्र तथा पुण्य तीर्थ स्थल में किसी एक स्थान को चुने। यह स्थान समतल हो, ना तो अधिक ऊंचा और न नीचा। तब वहां सुखपूर्वक स्थिर तथा संभाव से बैठकर शरीर को सीधा रखकर वैदिक प्रणाम मंत्र का उच्चारण प्रारंभ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तात्पर्य ध्यानपूर्वक सुने। सामान्यतः ओम जप की संस्तुति की जाती है क्योंकि प्रारंभ में पुरुषोत्तम भगवान को समझना कठिन होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत पहला स्कंद दूसरा अध्याय 11वें श्लोक में कहा गया है, वदन्ति तत्व तत्विदस्तम यज्ञानम अध्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। विद्वान आध्यात्मवादी जो परम सत्य को जानते हैं इस अद्वैत तत्व को ब्रह्मा परमात्मा या भगवान कहकर पुकारते हैं। जब तक कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में पूर्णता आश्वस्त नहीं हो जाता, उसके अपने हृदय के भीतर परमात्मा को ढूंढते हुए निर्विशेष योगी बनने की संभावना होती है। ध्यान अवस्थिता तद्गणेन मनसा पश्यन्तियम योगिनः। यहाँ पर ओंकार जप की स्तुति की गई है क्योंकि दिव्य अनुभूति के प्रारंभ में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप न करके मनुष्य ओंकार का जाप कर सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र तथा ओंकार में कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ध्वनि अभिव्यक्तियां हैं। प्रणव सर्ववेदेशु, समस्त वैदिक वाङ्मय में ओंकार ध्वनि ही शुभारंभ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकार के जप तथा हरे कृष्ण मंत्र के जप में यही अंतर है कि हरे कृष्ण मंत्र का जप स्थान या आसन का विचार किए बिना किया जा सकता है। इसकी स्तुति भगवद्गीता 6वें अध्याय 11वें श्लोक में की गई है। शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमास्मन आत्मना नातुचितम नातनीचम चेला जिन कुशोत्तरम। अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान में जाना चाहिए और भूमि पर कुशा बिछा कर उसके ऊपर मृगचर्म तथा मुलायम कपड़ा डाल देना चाहिए। आसन ना तो अधिक ऊंचा हो और ना अधिक नीचा हो, इसे पवित्र स्थान में होना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र को कोई भी व्यक्ति स्थान या आसन का विचार किए बिना जप सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट किया है, नियमिता स्मरणे न कालः। हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने के लिए आसन के विषय में कोई विशिष्ट आदेश नहीं है। नियमिता स्मरणे न कालः नामक आदेश में देश काल तथा पात्र सभी समाविष्ट हैं। अतः कोई भी व्यक्ति देश तथा काल का ध्यान रखे बिना हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। विशेषतः इस कलयुग में भगवद गीता द्वारा संस्तुति उपयुक्त स्थान खोज पाना कठिन है, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र का जप किसी भी स्थान में किसी भी समय किया जा सकता है और इससे तुरंत ही फल मिलता है। फिर भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए विधि विधानों का पालन किया जा सकता है। अतः जप के समय शरीर को सीधा रखा जाए, इससे जापक को सहायता मिलेगी, अन्यथा उसे नींद आ सकती है। ओम अज्ञानान्ति मिरांधस ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलिंगायते गिरिं यत् कपातमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन सत्र में। विशद श्रीमद् भागवतम सुनना अपने आप में ही एक मंगलकारी एक शुभ कार्य है। यदि वही कथा का श्रवण श्रीधाम वृंदावन धाम में किया जाए और वृंदावन धाम पर भी कृष्ण बलराम मंदिर में, कृष्ण बलराम मंदिर के बलराम हॉल में, जहाँ पे एक नहीं दो नहीं दस दस एयर कंडीशनिंग लगे हुए हैं, उत्तम गुणवत्ता का साउंड सिस्टम है और हरी कथा के बाद सभी भक्तों को निःशुल्क प्रसाद की व्यवस्था है, तो इसे बोलते हैं सोने पे सुहागा। फिर कथा का आनंद और अधिक बढ़ जाता है और अधिक उसका लाभ मिलता है क्योंकि मन प्रसन्न रहता है। तो ऐसा बताया जाता है, प्रसादा शिखरो अस्ति अपि काका न गरुणयते, कि यदि कौवा मंदिर के शिखर पर बैठ भी जाए तो कभी गरुण नहीं बन सकता है। तो वही ऐसी स्थिति कुछ हमारी भी है कि यहाँ वास्तव से आकर बैठ तो जरूर गए हैं, लेकिन आज के स्थातर में प्रभुपाद जी विशेष रूप से कीर्तन यज्ञ का गुणगान कर रहे हैं। तो संकीर्तन यज्ञ का गुणगान एक्चुअली में मुक्त आत्माओं के द्वारा वास्तव में वही कर सकते हैं, उनके द्वारा होता है। हमेशा बद्ध जीव का गुणगान करना ऐसा जैसे कि कौवे अगर ऊंचाई पर भेंट भी गया तो गरुड़ नहीं बन सकता। लेकिन चूंकि सेवा है और विशेष अपने निजी शुद्धिकरण के लिए आप सभी वैष्णव और वैष्णव से प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं, अपना आशीर्वाद स्नेह प्रदान करें कि थोड़ा कुछ टूटी फूटी भाषा में हम कुछ कह सकें। और ऑनलाइन पे भी जो वैष्णव और वैष्णविया कथा का श्रवण कर रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि अपना आशीर्वाद स्नेह दें ताकि हम टूटा फूटा कुछ गुणगान कर सकें। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं श्रीमद् भागवतम की 10 मूल विषय वस्तु हैं। उन 10 विषय वस्तु के पर ही पूरी श्रीमद् भागवतम जो 12 स्कंध हैं और उस पर ही आधारित है। और वो कौन सा श्लोक है आप सब जानते हैं, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उदया मन मंत्रे ईशानुकथा निरोधा मुक्तिर आश्रया। तो श्रीमद् भागवतम के जितने भी स्कंध हैं उन सभी स्कंध में इन सभी तत्वों का वर्णन किया गया है, सभी विषयों का वर्णन है। ऐसा नहीं कुछ विषय छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं है, सभी विषयों का वर्णन है। किंतु किसी एक विशेष स्कंध में किसी एक तत्व की अत्यधिक प्रधानता दी गई है। जैसे कि सातवां स्कंध चल रहा है तो सातवां स्कंध को इसमें कौन सी विषय वस्तु उसका तत्व क्या है, उति। उति उति को इंग्लिश में बोलेंगे इंक्लिनेशन, हिंदी में कह सकते हैं प्रेरणा या झुकाव लगाव रुचि इत्यादि। तो आचार्यगण बताते हैं कि उति भी दो तरह की होती है, एक होती है शुभ उति और दूसरी होती है अशुभ उति। शुभ उति कौन सी होती है, शुभ अति वो होती है जिसमें साधक का भगवान के प्रति, भागवत के प्रति, भक्तों के प्रति अनुकूल भाव होता है, शुद्ध भक्ति करते हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज, उसकी कथा आप लोग श्रवण कर चुके हैं। अशुभ उति कैसी होती है कि व्यक्ति भगवान का स्मरण तो करता है किंतु प्रतिकूल भाव में करता है, जैसे कि हिरण्याकश्यप। तो यह सातवां स्कंध है, इसमें कुल मिला के 15 अध्याय हैं और शुरू के 1 से लेकर 10 अध्याय तक जो है उसमें उसमें जो है कि शुद्ध भक्ति का वर्णन किया गया है। लेकिन आखिर के जो 5 अध्याय हैं उसमें वर्ण व्यवस्था का या ये कहें कि मिश्र भक्ति का वर्णन किया गया है। तो हमारे जो इस जो स्कंध चल रहा है इस स्कंध के अंदर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नारद मुनि ने प्रश्न, युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से प्रश्न किया, तो आखिर के 5 अध्याय में युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न करने पर नारद मुनि ने उनको वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया, वर्ण व्यवस्था क्या होती है, 4 आश्रम कौन से होते हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, उनकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या जिम्मेदारी है, वो सब बताया। आप लोग सब लोग सुन चुके हैं, जैसे कि 12वें अध्याय में वर्णन किया ब्रह्मचारी आश्रम का क्या कर्तव्य है, कैसे ब्रह्मचारी आश्रम का नियम का पालन करना चाहिए, और 12वें अध्याय में ही वानप्रस्थ के विषय में भी बताया गया। फिर 13वें अध्याय में संन्यास आश्रम के विषय में जानकारी दी गई, और 14वें और आज के 15वें अध्याय में माननीय आदरणीय गृहस्थ भक्त के विषय में चर्चा चल रही है कि किस प्रकार गृहस्थ भक्त जो है गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष तात्पर्य यहाँ भगवत प्राप्ति से है। तो इसी चर्चा में यही श्रृंखला पूरी चल रही है, नारद मुनि अपना प्रवचन दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। तो हम शॉर्ट में इस पूरे अध्याय का श्लोक से अवलोकन कर लेंगे अभी आज के श्लोक तक, कि श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 11 तक तो नारद मुनि ने वैदिक रिचुअल्स यानी वैदिक कर्मकांड के विषय में बताया है। विशेष रूप से उसमें उन्होंने श्राद्ध विधि का, श्राद्ध विधि विधान के विषय में जानकारी दी जो आप सब लोग सुन चुके हैं, और उन्होंने ये भी बताया किस तरह से एक साधक जो है वैदिक कर्मकांड को लांग सकता है। और फिर श्लोक क्रमांक 12 से लेकर 21 तक 5 तरह के जो अधर्म है उनके बारे में उन्होंने चर्चा करी, वो भी आप लोग सुन चुके हैं। फिर श्लोक क्रमांक 22 से लेकर 29 तक नारद मुनि ने बताया कि किस प्रकार गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी साधक अपने जो अनर्थ होते हैं विशेष रूप से काम वासना है उसको किस तरीके से वो लांग सकता है, क्रॉस कर सकता है और गुरु का गुणगान कर सकता है। तो गुरु का गुणगान बताया और किस तरह से घर आश्रम में रहते हुए भी साधक अपने अनर्थों से मुक्त हो सकता है। और फिर 23 से लेकर 40 तक के श्लोकों में नारद मुनि बताते हैं कि किस प्रकार एक गृहस्थ भक्त जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। अभी जो आज का श्लोक है यह श्लोक क्रमांक 31। तो इस श्लोक के पिछले श्लोक में श्लोक क्रमांक 30 में नारद मुनि ऋषि महाराज को बताया। अब ऋषि महाराज तो बोलते हैं कि नारद मुनि हम तो एक फालन गृहस्था है, दिन भर गृह कार्य में लगे रहते हैं, जीविका पाजन में लगे रहते हैं। जो दूसरे आश्रम के सदस्य ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थ सन्यासी हैं, इनके पास तो काफ़ी समय होता है भगवत भक्ति करने का, भजन करने का, तो उनका कल्याण जल्दी हो सकता है, अधिक सुगमता से हो सकता है। हम जैसा गृहस्थ भक्त जिस पर तरह तरह की जिम्मेदारियाँ हैं, ऋषि महाराज पर तो घर परिवार के अलावा पूरे पृथ्वी की पूरी प्रजा की जिम्मेदारी थी। प्रजातों का सारे जीव जलचर उन तक की उनके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी थी, नदियों पहाड़ों तक की जिम्मेदारी थी ऋषि महाराज पे। तो हम कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं, हम कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? अभी हम सब जानते हैं ऋषि महाराज महाभागवत है, उनको सब पता है, सब जानते हैं, फिर भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं। क्यों? जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं उनका लक्षण होता है कि हालांकि उनको जानकारी रहती है, उनको सब विषय वस्तु के बारे में पता होता है, फिर भी वो और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं, उनमें लालसा होती, आतुरता होती जानने की, तब वो प्रवचनकर्ता से और प्रश्न पूछते हैं। अभी यादृष्टि महाराज सब जानते हैं, एक कारण ये है। और दूसरा कारण ये भी है कि वो हम जैसे बद्ध जीवों के कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हैं ताकि नारद मुनि के श्रीमुख से प्रवचन निकले और हम जैसे बद्ध जीवों का लाभ हो, हम उसका लाभ उठा सकें। तो श्लोक क्रमांक 30 में वो बताते हैं नारद मुनि कि जो गृहस्थ भक्त होते हैं, देखिए तो वो मन की समस्या के संबंध में बोल रहे हैं। मन तो आजकल सभी का ही डिस्टर्ब रहता, मन संबंध मत्यो मंद भाग्या हबुदता, श्री भागवतम बताती है कलयुग में प्राय लोग डिस्टर्ब रहेंगे, अननेसेसरी कारणों से भी डिस्टर्ब रहेंगे। रास्ते में जा रहे हैं, किसी का सुंदर मकान देख लिया, अब हो गए डिस्टर्ब, अभी कोई जरूरत नहीं है डिस्टर्ब होने की, हो जाते हैं, कलयुग का प्रभाव है, क्या करें। तो कलयुग में मन की समस्या बड़ी प्रचंड रूप में रहती है। तो वो बताते हैं कि देखिए गृहस्थ भक्त को चाहिए यदि उसे मन पर विजय पाना है, ये श्लोक क्रमांक पिछले श्लोक में बता रहे हैं जो आपने कल सुना, कि मन पर विजय पाना है, यदि विजय पाने की वो इच्छा रखता है तो उसको चाहिए कि सबसे पहले वो क्या करे, अपने परिवार का त्याग कर दे। परिवार का त्याग, त्याग का मतलब ये नहीं कि सारी जिम्मेदारी छोड़ के भाग जाए, ये मतलब नहीं है, जिम्मेदारी निभाने के बाद। और फिर क्या करे, एकांत स्थान में जाए और एकांत स्थान में जाकर भिक्षा मांगकर वो अपना जीवन यापन करे। तो भिक्षा में जो भी उसे मिले, जो भी शरीर और आत्मा को मेंटेन करने के लिए, शरीर और जीवात्मा का एक साथ पालन पोषण के लिए मिनिमम कम से कम जितना आवश्यक है वो ग्रहण करे और मन को भगवत भक्ति में लगाने का प्रयास करे। या अभी श्लोक में जैसा आज का श्लोक है, इसमें अष्टांग योग की बात हो रही है। अभी देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी पथ हो भगवत प्राप्ति का, कर्म योग हो, अष्टांग योग हो, ज्ञान हो वो या भक्ति योग हो, हर योग में साधक को उस मार्ग में प्रवेश करने के पहले, उस मार्ग में प्रवेश करने के पहले कुछ निर्धारित योग्यता होती है जिसका उसको उस योग्यता के लायक अपने आप को उसको बनाना पड़ता है। और मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना है, भौतिक जगत में भी हम देखते हैं उसे MBBS एग्जाम पास कर, जो PMT एग्जाम वगैरह जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब पास करने पड़ते हैं उच्च श्रेणी में। उसी प्रकार यदि किसी साधक को अष्टांग योग करना है तो उसकी भी निर्धारित योग्यता है। वो योग्यता जब होती है तब उस योग के जो गुरु हैं तब उसको वो शिक्षा पद्धति बताते हैं, जो 8 स्टेजेस जो आप जानते हैं, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, वो आप लोग जानते हैं। तो अष्टांग योग में प्रवेश करने की मिनिमम निर्धारित योग्यता क्या है कि साधक को संसार के प्रति, संसार के सुखों के प्रति, संसार में जो तरह की चर्चाएं चलती हैं, जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उन सब से उसको विरक्त होना चाहिए। विरक्त भी कितना होना चाहिए, 100%, 100%। ये टेस्ट करने के बाद वो गुरु जीव गोस्वामी 11 कैंटों की टीका में सब विस्तार रूप से बताते हैं, वो ये सब टेस्ट करने के बाद गुरु उनको ये मार्ग बताते हैं, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम समाधि तक तब बताते हैं। तो यदि अष्टांग योग में साधक को ज्यादा पहली क्वालिफिकेशन है कि उसे 100% वैरागी होना चाहिए। अभी हम लोग भक्ति योग में क्या हमारी ऐसी कोई योग्यता है क्या? हमको तो कहीं कोई आचार्य गण प्रभात जी ने कहीं नहीं बताया कि आपको अगर भक्ति करनी है, महामंत्र का जाप करना, संकीर्तन यज्ञ में अगर आपको भाग लेना है तो आपको 100% विरक्त होना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई योग्यता भक्ति योग में नहीं मांगी गई है। इसी बात की तुलना प्रभात जी तात्पर्य में कर रहे हैं अष्टांग योग और भक्ति योग की। भक्ति योग में क्या योग्यता, जैसे मैंने कहा हर योग में, इस भौतिक जगत में भी आप कोई चीज़ अगर प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ फ्री कुछ नहीं मिलने वाला है, हर चीज़ की कीमत देनी पड़ेगी यहाँ। और हमें से कोई सोच रहा कि मैं कोई भी चीज़ प्राप्त कर लूँगा फ्री में, वो बहुत मुश्किल है। हर चीज की कीमत देनी पड़ती है। इसी प्रकार भक्ति भी यदि कर रहे हो तो भक्ति में भी निर्धारित योग्यता है, और वो योग्यता क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत हो। तो श्रद्धा होना जरूरी है। भक्ति का पथ जो है जो वो भी चालू होता है अधो श्रद्धा से चालू होता है। सबसे पहले श्रद्धा आवश्यक होती है। तो भक्ति के पथ में जो निर्धारित योग्यता है वो होती है श्रद्धा। अभी इसमें हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि अनन्य भक्ति की अगर बात करेंगे तो वहां तो पूर्ण श्रद्धा चाहिए, 100% श्रद्धा चाहिए, जो कि शीर्ष में आवश्यक नहीं कि हर साधक वो श्रद्धा ला सके, लेकिन कुछ तो श्रद्धा उसकी होती है। तब तो मणिपुरम में सुबह इतनी गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ रही है, लोग सुबह सुबह उठ के आते हैं घरों से, भग्रस्त भक्त आ रहे थे दूर चल के भागते हुए आ रहे हैं, जैसे कोई लॉटरी खुलने वाली वैसे आते हैं, पूरा मणिपुरम अटेंड करते हैं, भगवत क्लास श्रवण करते हैं, तो कुछ तो श्रद्धा है तब आ रहे हैं, नहीं तो क्यों आते। तो श्रद्धा तो एक साधक की रहती है, तभी वो भक्ति में प्रवेश कर रहा है। लेकिन जीव गोस्वामी बताते हैं श्रद्धा भी दो तरह की होती है, एक होती है लौकिक श्रद्धा और एक होती है शास्त्रिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा क्या होती है? लौकिक श्रद्धा वो श्रद्धा होती है कि जो घर में परिवार में परिजनों में अड़ोस पड़ोस में मोहल्ले वालों को देख कर आती है, ये नाम जप कर रहा मुझे भी कर लेना चाहिए, भगवान की पूजा कर रहा मुझे भी कर लेना चाहिए, वो शर्मा जी भगवतम क्लास में गए थे एक दिन मैं भी जाकर सुन लूंगा, ऐसी श्रद्धा आती है वो लौकिक होती है। लेकिन ये श्रद्धा आचार्य जीव गोस्वामी बताते हैं टिकती नहीं है जब जीवन में कठिनाइयाँ और विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, जब हवाओं का रुख बदलता है, जब भगवान परीक्षा लेते हैं भक्ति की, तब जिनकी लौकिक श्रद्धा होती है वो भक्ति छोड़ देते हैं। ये भक्ति तब तक करते हैं जब तक सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार आनंदमय चल रहा है, जैसा वो जीवन में चाह रहे हैं वैसा चल रहा है, तब तो उन्हें भक्ति अच्छी लगती है। और जहाँ किसी ने दो शब्द बोल दिए नहीं करना हमको माला, हम नहीं जाएंगे इस्कॉन मंदिर, ऐसे बोलते हैं लौकिक श्रद्धा। लेकिन जो शास्त्रिक श्रद्धा का अर्थ है कि शास्त्र पढ़ने के बाद शास्त्र को जो निष्कर्ष हैं, शास्त्र को जो सिद्धांत हैं, शास्त्र की शिक्षा है, उस पर जिसको श्रद्धा आ जाती है, वो साधक फिर भक्ति में कितनी तकलीफें आए कितने कष्ट आए फिर वो भक्ति में टिक जाता है, वो हिलता नहीं है। अगर भली तकलीफ में है लेकिन वो भक्ति नहीं छोड़ेगा, माला जाप छोड़ेगा ही नहीं, वो भक्तों का संग छोड़ेगा नहीं, हरि कथा सुनेगा ही सुनेगा, क्योंकि उसने इतनी श्रद्धा उत्पन्न कर ली है। इसको बोलते हैं शास्त्रिक श्रद्धा। इस श्रद्धा का होना भक्ति के लिए अति आवश्यक होता है। अभी देखिए, अभी आज के अगर हम तात्पर्य की बात करें तो उसमें प्रभुपाद जी दो चीजें बोल रहे हैं। एक तो सबसे पहले वो ये बोल रहे हैं कि देखिए हरे कृष्ण महामंत्र में और ओंकार में यानी वैदिक प्रणव मंत्र में कोई अंतर नहीं है। ऐसा प्रभुपाद जी शुरू के तात्पर्य बोल रहे हैं, हम सबने सुना। लेकिन फिर नीचे क्या बोल रहे हैं? अंतर है भी, अंतर भी बता रहे हैं। ऐसा कैसे? तो कभी कोई अगर कोई नया पाठक हो तो पढ़ के भ्रमित हो सकता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। एक तरफ प्रभुपाद जी बोलते कि अंतर है, एक तरफ बोल रहे अंतर नहीं है। इसी प्रकार भक्ति में भी जब हम लोग सिद्धांतों को समझते हैं, शिक्षाएं लेते हैं श्रीमद् भागवत की, भागवत धर्म को समझते हैं, तो किसी भी सिद्धांत को हमें समझने के लिए आवश्यक है कि हमें सिद्धांत की पूर्ण समझावट होनी चाहिए। जबकि सिद्धांत पर चर्चा चल रही है तो प्रवक्ता का कर्तव्य है या जो जागरूक श्रोता होते हैं वो इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि तथ्य जो बताया जा रहा है, जो सिद्धांत स्थापित किया जा रहा है, इससे कुछ और पहलू भी हैं, इससे कुछ और पक्ष भी हैं, उन पर चर्चा हो रही है या नहीं हो रही है। यदि पूर्ण ज्ञान नहीं है हमें उस सिद्धांत का तो साधक हमेशा भ्रमित रहेगा। ऐसा देखा जाता है भक्ति में, कभी 25 साल तक लोग भक्ति करते हैं लेकिन मन में डाउट रहते हैं, तरह तरह के कन्फ्यूजन रहते हैं और अप्लीकेशन ठीक से नहीं कर पाते, कोई क्लैरिटी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी सहनशीलता की बात की जाए तो साधे गुरु सब यही बोल रहे हैं कि कृष्ण भक्त को सहनशील होना चाहिए। तितिक्षवा कारुणिका सुदम सर्वदयिनाम श्रीमद् भागवतम बोल रही है। भगवद्गीता में भगवान बोल अध्यष्टा सर्वभूतानाम तेरवाध्याय में श्लोक है जहाँ भगवान सहनशील की बात कर रहे हैं, अमानितम अधमकितम श्लोक में। तो यस, कृष्ण भक्त को सहनशील होना ही चाहिए, निश्चित है एकदम। सहनशीलता कृष्ण भक्त का आभूषण है, होना ही चाहिए उसको सहनशील। लेकिन वही साधु, वही गुरु, वही आचार्य ये भी बताते हैं वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां भक्त को सहनशील नहीं होना चाहिए, वही बताते हैं। तो हमें उसकी भी समझावट होनी चाहिए। या हम श्रीमद् भागवतम का नवा स्कंद उठाएं, सुकन्या पास टाइम, और आप में से भक्तों ने पढ़ा होगा, काफी भक्तों ने, तो वहां देखते हैं कि चवन्य मुनि थे, बिल्कुल वृद्ध, 90 साल के जैसे, शरीर पूरा लटक गया, चमड़ी लटक गई, गर्दन लटकी हुई है, सब बाल सफेद हो गए हैं और बिल्कुल वृद्ध अवस्था में व्यक्ति था, वैसे थे वो। मैं उनकी पत्नी सुकन्या बिल्कुल जवान युवा अद्भुत सुंदर एकदम जस्ट ऑपोजिट, लेकिन उसने ऐसी सेवा करी, अपने पति की ऐसी सेवा करी जैसे मदर देवहूति ने कदम मुनि की करी। तब वो तात्पर्य अगर पढ़ेंगे, उसने प्रभुपाद जी ने बहुत कड़े रुख में, कड़े शब्दों में बोला कि पत्नी को हमेशा पति के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए, विनयशील होना चाहिए। पति चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, बीमार हो, कैसा भी हो, पत्नियां करते हो उसकी सेवा करनी चाहिए। यस, करना चाहिए, कौन मना करता है। पत्नी को हमेशा पति के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, गुरु साधु शास्त्र उसके विषय में ही बताते हैं, पति की योग्यता भी बताई गई। प्रभुपाद जी बोलते हैं हस्बैंड शुड बी अ फर्स्ट क्लास ब्राह्मणा, हस्बैंड जो है उच्च कोटि का ब्राह्मण होना चाहिए। एक जगह प्रभुपाद जी बताते कि कम से कम पति को मध्यम अधिकारी स्तर पर होना चाहिए। तो कहने का भाव यह है, जब भी किसी शास्त्र पर चर्चा की जाए तो उसके सभी पहलुओं को छूना चाहिए, तब जाके पूर्ण समझावट आती है। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र और वैदिक मंत्र में कोई अंतर नहीं है, तो हमें उसका संदर्भ समझना चाहिए कि किस संदर्भ में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो जो अच्छे श्रोतागण होते हैं, वो जब किसी सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो तीन चीजें देखते हैं। पहले टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्री टेक्स्ट पिछले वाला श्लोक क्या बोल रहा है, कॉन्टेक्स्ट किस चीज में बात कही जा रही है। जब ये तीन चीजें देखते हैं और फिर भक्तों का विचार विमर्श करके सिद्धांत की पूर्ण समझावट आ पाती है। प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कि दोनों मंत्र बराबर हैं, तो वो किस दृष्टि से, किस संदर्भ में कह रहे हैं कि वो दोनों फल के आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से बोल रहे हैं कि कोई वैदिक मंत्र उच्चारण करे वही भगवत धाम जा सकता है, और जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे वही भगवत धाम जा सकता है। इस दृष्टि से तो दोनों बराबर हैं। फिर प्रभुपाद जी तुरंत बोल रहे हैं एकदम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी अष्टांग योग या ज्ञान योग की बात आती है तो प्रभुपाद जी तुरंत तात्पर्य में आप देखेंगे एकदम से हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते गतिर अन्यथा। तो तुरंत सिद्धांत स्थापित करते हैं कलयुग में संकीर्तन यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। हर जगह आप तात्पर्य में देखें, इसी तात्पर्य प्रभुपाद जी संकीर्तन यज्ञ का गुणगान कर रहे हैं, और वो नीचे बोलते हैं कि भैया हो सकता है कि अष्टांग योग में साधक को इतना सोचना पड़ेगा कि क्या क्या चाहिए उसको जब उसे आसन लगाना है। तो हाँ, देशे यानी स्थान शिचौ, स्थान पवित्र होना चाहिए, समय यानी समतल होना चाहिए, स्थान ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए, और क्या करना चाहिए, स्थिरम मन को स्थिर रखना चाहिए, और फिर शरीर को रिजुअंग यानी शरीर को सीधा रखना चाहिए, एकदम कड़ा रखना चाहिए। तो कड़ा रखेगा तो तकलीफ होगी क्योंकि लंबी साधना चलेगी। तो बोलते नहीं, शरीर को इतना रखें कि शरीर को कष्ट भी नहीं हो और सीधा भी रह सके। तो तुरंत तात्पर्य में बोल देते हैं ये अष्टांग योग में होता होगा, हमारे भक्ति योग में, हमारे संकीर्तन आंदोलन में ऐसा कोई आवश्यक नियम नहीं है कि कड़े होकर आप जप करें। हाँ, करें तो अच्छा है, लेकिन यदि मैं सीधा करके जप पूर्व में सोच रहा हूँ कि मेरा नाम जप अच्छा चल रहा है तो ये भी एक गलत धारणा है। दूसरे भक्त को मैं देखूंगा ऐसे लटके हुए लुंज पुंज और हरे कृष्ण बोल रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ तो सो रहे हैं अटेंटिव है, जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति आराम से बैठकर भी लुंज पुंज लटक के भी ध्यानपूर्वक जप कर सकता है, और कोई आंखें बंद कर खड़ा होकर भी पूरे ब्रह्मांड की सेवा कर सकता है। तो ऐसा कोई आवश्यक नियम नहीं है। और यहाँ नहीं, भक्ति में जब नाम जप करते तो भक्त आपको खड़े होकर जप करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी तकलीफ आ रही तो चलकर जप करते हैं, और प्रॉब्लम आ रही तो दौड़कर जप किया जा सकता है। शर्त बस ये है कि हमारा प्रयास ये रहे कि हम ध्यान जप को सुनने में ध्यान लगा सके, ये है मुद्दा, और कुछ मुद्दा नहीं। तो हमारी ऐसी कठिन पाथ नहीं अष्टांग योग वाला। इसी बात को प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आपके अष्टांग योग में होता है, हमारे भक्ति योग में तो ये सब चीजें नहीं चलती, मतलब बिल्कुल आसान है। अभी एक तात्पर्य में आगे वर्णन को हमारे प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण कीर्तन निकल नाच लेता और गा लेता है, यदि कोई हरे कृष्ण कीर्तन में नाच रहा और गा रहा है उसे आध्यात्मिक पथ की सारी सिद्धियां मिल जाती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे अवर मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ डांसिंग फिस्टिंग एंड चैंटिंग। हमारा जो आंदोलन है बड़ा आनंदमय आंदोलन, डांस करो, जल्दी सभी को डांस करना अच्छा लगता है। तो फिल्मी गाने के बजाय हरे कृष्ण कीर्तन में कर लो फिस्टिंग, सबको खाना चाहिए, लोगों को अच्छा खाना अच्छा लगता है, भगवान का भोग लगा के खाइए। कीर्तन करना है, फिल्मी गाने गाते हैं, कीर्तन गाइए, और भगवत धाम प्राप्ति निश्चित है आपकी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब कोई भी आप सेल में जाते हैं ना, बड़ा विक्रेता की 70% छूट है आज, जूतों की सेल चल रही है, कपड़ों की सेल चल रही है, तो छूट लिखा रहता है, नहीं नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है नियम व शर्तें लागू, टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड, तब उसका भी ध्यान देना पड़ता है। हालांकि महिमा है कीर्तन की, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कीर्तन कर रहे हैं, हम भी थोड़ा कीर्तन का गुणगान करेंगे, कीर्तन महिमा का, लेकिन पहले थोड़ा देख ले कि इस श्लोक की टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद क्या बोल रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद केवल एक लाइन में बात करते हुए बोलते हैं कि अष्टांग योग के साधक को चाहिए कि वो केवल स्ट्रेट रहे और ओम मंत्र का जाप करे, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इतना बोलते हैं बस। श्रीधर स्वामी क्या बोलते हैं अपनी टीका में, वो बोलते हैं कि अष्टांग योग के साधक को आसन बिछाना चाहिए और वह स्थान कैसा होना चाहिए, एक पवित्र होना चाहिए, दूसरा समतल होना चाहिए, यानी ऊपर नीचा नहीं होना चाहिए। और क्या करना चाहिए, तो बोलते मन को स्थिर करना चाहिए साधक को, और शरीर को सीधा रखना चाहिए। कैसे सीधा रखना चाहिए, तो बताते हैं सुखपूर्वक या आरामदेह पूर्वक स्थिति में शरीर को सीधा रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में शरीर के अंगों को सीधा रखते हुए जैसे सुख मिले वैसे बैठना चाहिए और ओम का जाप करना चाहिए। श्री स्वामी ये बोलते हैं कि आराम शरीर को रखे, कड़ा रखे, लेकिन इतना रखे कि शरीर को कष्ट भी नहीं हो, आरामदेह पूर्वक रहे, ओम मंत्र का जाप करें। लेकिन हमारे प्रभुपाद दादा दादा फाउंडर आचार्य ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मत संघ के संस्थापक, डीबीटी के संस्थापक आचार्य, हमेशा हर जगह जो है कीर्तन की महिमा का गुणगान करते हैं। अभी हमको भी अभी हरिनाम सप्ताह चल ही रहा था, हमको भी अवसर मिला गुणगान करने का, लेकिन कुछ कारणवश गोवर्धन से आ नहीं सके। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी गुणगान कर रहे हैं, तो हम भी इस अवसर का लाभ उठा के थोड़ा सा कीर्तन महिमा का गुणगान करेंगे कि हम लोग इस आंदोलन में हैं उसकी कितनी महिमा है। तो श्रीमद् भागवतम के छठवें स्कंद के तीसरे अध्याय के 27-28-29 श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति इसने भले कितने ही पाप क्यों ना किए हो, जघन से जघन पाप क्यों ना किए, थोड़ा जीवन में एक बार भी हरि नाम ले लिया, एक बार केवल हरे कृष्ण बोल दिया, नरक का दरवाजा बंद हो गया उसका, अब नरक में एंट्री नहीं, उसके नरक नहीं जा सकता वो, भले कितने पाप किए हो। तो आप जितने लोग यहाँ बैठे हो आप सब विष्णु दूत हो। वो कैसे कि आपको देखकर जब भी वो बोलता हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, क्या किया आपने, उसको नरक का दरवाजा बंद कर दिया। कभी कभी बाहर के लोग बोलते हैं आप लोग क्या कर दो हरे कृष्ण वाले, बस मुंडी हिलाते रहते हो, माला जप करते रहते हो, कुछ देश के समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हो आप। तो हमको समझना चाहिए हम बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, घर की, परिवार की, समाज की, देश की, सबकी, पूरे मानव जाति की सेवा कर रहे हैं। कि एक बार उसने हमें देखकर हरे कृष्ण बोल दिया और वो नरक नहीं जाने वाला है। तो सारे विष्णुदूत बैठे हैं मेरे सामने जितने बैठे हुए हैं, मैंने बोला प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं छठवें स्कंद में। यहाँ तक वो इतना भी लिखते हैं कि हम लोग इसीलिए जब दीक्षा देते हैं तो साधक का आध्यात्मिक नाम दे देते हैं। क्यों देते हैं, यदि मरते समय साधक भगवान का स्मरण नहीं भी कर पाए, उसने केवल अपना नाम भी याद कर लिया वृंदावन बिहारी दास, तो भगवत धाम तो उसकी सदगति हो जाएगी। इतना प्रभुपाद जी बोलते हैं, इतनी हरि नाम की महिमा के, चलो भगवान का नहीं कर पा रहे, अपना नाम तो याद रहेगा, वही स्मरण कर लो, निवृंदावन भैदो गए भगवत धाम, सदगति है यार। फिर छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 9-10 श्लोक में चक्रतिपाद बताते हैं, यदि कोई चोर है, चोरी करता है, धन चुराता है, संपत्ति चुराता है, कोई शराबी है, शराब पीता है, पाप कर, शराबी पीना पाप कार्य माना जाता है, कोई विश्वासघाती है, परिजनों से मित्रों से विश्वासघात किया है उसने, और इतना ही नहीं जघन्य अपराध है, गुरु की पत्नी के साथ अनैतिक कृत्य में लिप्त है कोई, या ब्राह्मण को मारता है, ब्राह्मण को मारना जघन्य अपराध माना गया शास्त्रों में, स्त्री का वध करता है, किसी राजा का वध करता है, अपने पिताजी का वध करता है, गौ माता का वध करता है, इतना सब करने के बाद भी यदि उसने जीवन में एक बार हरि नाम ले दिया, एक बार कल प्रभु का स्मरण कर लिया, तो जानते हैं क्या परिणाम है उसका। विशाल चक्रतिपाद भी टीका में बोलते हैं कि एक बार भी जब नाम लेता है तो भगवान का ध्यान उस पर चला जाता है। अभी सोचिए भगवान कृष्ण द डार्लिंग ऑफ वृंदावन, डार्लिंग ऑफ गोपीज, वो साधक पे ध्यान दे रहे हैं, उनका अटेंशन ले लिया उसने, और भगवान ये सोचते हैं भले इसने कितने भी पाप किए हों, मेरा नाम लिया ना इसने, अभी मेरा कर्तव्य है, अपनी जिम्मेदारी समझते, ऐसा लिखते हैं वो कि भगवान सोचते मेरी जिम्मेदारी, मेरा कर्तव्य कि मैं इसकी सुरक्षा करूं, मैं सुरक्षा करूंगा उसकी, अभी मेरा आदमी बन गया, ऐसा लिखते हैं वो, इसने मेरा इतना पाप ही है, मेरा नाम एक बार ले दिया, नाउ ही इज माय मैन, मेरा पर मेरा सदस्य हो गया है, तो माया देवी अब आप हट जाइए, अब मैं उसको डायरेक्टली डील करूंगा। ये हरिनाम की महिमा का प्रभाव है। और फिर विश्वास चक्रीपाद आगे अपनी टीका में बोलते हैं कि किसने यदि जीवन में एक बार भी नारायण का नाम ले लिया, भले वो कितना पापी हो, उसके जितने पूर्वजन्म को जितने पाप थे वो खत्म, वर्तमान में जो पाप कर रहा है वो खत्म, वो भविष्य में जो पाप करेगा उसका उसका कर्मफल नहीं आने वाला है। तो भगवान की भक्ति इतनी प्रभावकारी होती है कि वो पाप तो छोड़िए, पाप करने की जो जड़, जड़ क्या है, इच्छा या अविद्या, उसको ही खत्म कर, नष्ट कर देती है हरि नाम के प्रभाव से। और कभी कभी कोई ऐसा सोच सकता है कि जो हरि नाम है वो जो है केवल कलयुग में ही है, तो ऐसा नहीं है, हरि नाम सभी युगों में समान रूप से उपलब्ध रहा है, सतयुग में भी था। तो प्रश्न उठता है कि जब हरि नाम इतना आसान है इतना करना, तो सतयुग के जो लोग थे वो क्यों इतनी कठिन कठिन तपस्या 50,000-60,000 वर्ष तक जंगलों में इतनी कठिन तपस्या करते थे, मन को लगाते थे। तो जिस गुरु साहिब अपने ग्रंथ भक्ति संदर्भ में बताते हैं, सतयुग के जो लोग होते थे उनमें एक विशेषता होती थी कि वो भगवान के द्वारा क्या बोलते हैं उसको एबनॉर्मल भगवान के द्वारा उनको विशेष रूप से एक विशेष आत्मबल शारीरिक बल और मानसिक बल होता था, असाधारण याद आ गया, असाधारण शक्ति होती थी उनके अंदर शारीरिक बल और मानसिक बल की। उनके शरीर में इतनी शक्ति होती थी कि उनको ऐसे उनको पता चले कह रहे केवल जीवा और होंठ हिलाने और भगवत धाम की प्राप्ति तो हमें नहीं करना है, हम तो पहाड़ पर जाएंगे, जंगल में जाएंगे, वहां पर हम साधना करेंगे एकदम। इतना शरीर तगड़ा होता था उनका, मन एकदम स्थिर और शांत रहता था। तो उनको जब पता चलता था कि जीवा और होंठ हिलाना तो वो थोड़ा भक्ति को या महामन थोड़ा ऐसा ऐसा लिखते कि इन्फीरियर यानी थोड़ा इतना सम्मान नहीं देते थे वो, क्योंकि वो लिखते ऐसा क्यों होता था कि जब साधक में बहुत असाधारण बल होता है या शक्ति होती है उसके अंदर एक अहंकार होता है, और वो अहंकार कब संतुष्ट होता है जब वो बड़े बड़े काम करेगा, कठिन कठिन काम करता है, चुनौतीपूर्ण जब वो काम करता है तब उसको शक्ति मिलती है, उससे उसको संतुष्टि मिलती है उसके अहम को। तो इसलिए सतयुग के लोग जो लोग थे वो हरि नाम को महिमा को थोड़ा इन्फीरियर समझते थे, बल्कि ऐसा लिखते कुछ कुछ लोगों को तो श्रद्धा ही नहीं होती थी, ऐसा कैसे हो सकता है कल जीवा होटल आएंगे भगवत धाम चलाएंगे, हम नहीं मानते। लेकिन फल तब भी उतना ही था जितना आज भी है, कहने का भाव ये है। इसी प्रकार विष्णु चक्रतिपाद बोलते हैं कि अजामिल ने कल अजामिल के साथ सब लोग जानते हैं कल नामाभास लिया उन्होंने और नामाभास से क्या हुआ वैकुंठ की प्राप्ति ही। वो जाकर जंगल में नहीं गए जैसे आप बता रहे हैं ना, आसन ऊपर हो नीचे हो सीधे हो खड़े हो, अजामिल ने ऐसा कुछ नहीं किया है वैकुंठ की प्राप्ति ही उनको। प्रभा जी तात्पर्य लिखते हैं, यस मुझे याद आ गया, छठवा स्कंद दूसरा अध्याय 11वें श्लोक में प्रभा जी लिखते हैं यदि कोई केवल कीर्तन में आकर डांस कर ले और गा ले आध्यात्मिक जीवन को सारे लाभ मिल जाएंगे उसको। ये प्रभुपाद जी की करुणा है, प्रभुपाद जी की कृपा हम लोगों पे। फिर छठे स्कंद दूसरा अध्याय के 14वें श्लोक में विशाखा चक्रती पात्र लिखते हैं कि अरे इतना तो छोड़िए, कोई केवल इशारे रूप में हरे कृष्ण हरि नाम का भाव बोलते हरे कृष्ण इधर आना जरा, कभी हमारे भक्त प्रचार में आते तो लोग बोलते हैं आ गए हरे कृष्णा वाले, वो जा रहा हरे कृष्णा वाला, किधर गए हरे कृष्णा वाले इस तरफ गए, इतना ही उसने बोल दिया, सांकेतिक रूप से संकेत कर रहा है, उसे नाम की महिमा नहीं पता है। या परिहास परिहास में बोल दे हाँ हाँ आ गए गंजे हरे कृष्णा वाले, कभी वो लोग बोलते हैं, या जोकिंग में बोल दे हास परिहास में बोल दे, या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चल रहा है उसने भी जाके साथ में एक महामंत्र गा दिया, या फिर हेलेनम, हेलेनम को हिंदी में बोलेंगे कि वो मतलब वो सचेत नहीं, उस हरि नाम की महिमा पता नहीं है, अचेत अवस्था में सचेत नहीं है, वो जाने अनजाने में हरि नाम ले दिया उसने, बस इतना ही कर दिया, क्या उसका परिणाम होगा, अनजाने में ले दिया भी उसने, हंसी मजाक में परिहास में भी लिया, जितने उसके पाप कर्म में चली गए थे खत्म, पूर्व जन्मों के वर्तमान के सारे पाप खत्म, इतनी हरि नाम की महिमा बताई इन्होंने। इतना ही नहीं वो आगे बोलते हैं कि यदि कोई ट्रैवलिंग कर रहा है यात्रा कर रहा है और कोई मरणासन कोई ऐसी स्थिति आ गई कि प्राण छोड़ना पड़ रहे हैं, सांप ने काट लिया है, या कोई शरीर में बहुत भयंकर बीमारी हो गई, फीवर आ गया गंभीर, या शत्रु ने प्राणघातक हथियार से हमला कर दिया है, तो वो केवल एक बार प्रभु का नाम ले दे। हम तो इतना बड़ा मंत्र तो बोल रहे हैं 16 अक्षरों का, इतना लंबा जरूरत ही नहीं, हरे कृष्ण ही बोल रहे नारायण विष्णु जो नाम लेना ले दे, क्या होगा नरक नहीं जाएगा, वो नरक का दरवाजा बंद, इतनी महिमा हरि नाम की। और फिर बताते हैं वो 17वें श्लोक में कि भक्ति जो होती विष्णु चक्रतिपाद बोलते हैं अपनी टीका में कि भगवान की जो भक्ति होती है वो केवल पाप को खत्म नहीं करती, पाप की जो जड़ यानी इच्छा या कहें अविद्या है उसको ही खत्म कर देती है, भली चाहे साधक जाने में ले या अनजाने में ले। और दो अच्छी उपमाएं प्रभुपाद जी देते हैं, वो बताते हैं कि जिस प्रकार घास अगर सूखी है तो अग्नि को सूखी घास जलाने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगता है, तुरंत जला देती है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति कितने ही पापी क्यों ना एक बार नाम लिया सारे उसके कर्मफल जल जाएंगे। और दूसरा उदाहरण देते हैं वो कि यदि कोई रोगी है वो दवा ले रहा है, अब उसे दवा कितनी अच्छी है कितनी शक्तिशाली है कितनी पावरफुल है उसका उसको ज्ञान नहीं है, जाने अनजाने में उसे दवाई खा ली तो क्या होगा, दवाई तो अपना काम करेगी ठीक होगा वो, वैसे ही जिसने हरि नाम की दवाई ले ली एनएची औषधि माया नाशी बार लागी हरि नाम महामंत्र लाओ तुम ही मांगे, जिसने औषधि ले ली औषधि तो अपना काम करेगी ही करेगी, चाहे साधक जान के ले या अनजाने में ले। इसी प्रकार 11वें स्कंद छठा स्कंद दूसरा अध्याय 11वें श्लोक की टीका में विश्वास पकड़ बात बड़ी अच्छी बात बताते हैं, जैसे जनरली भक्त लोग परेशान रहते हैं प्रभु जी जप कर रहे हैं मन नहीं लग रहा है ध्यान नहीं लग रहा मन एकाग्र नहीं होता है, वो बोलते हैं एकाग्र मन विश्वास के बाद एकाग्र मन तो छोड़ दो, अगर व्यक्ति ने किसी भी तरीके से हरि नाम का जाप कर लिया यहाँ तक कि उसने कर्म पद्धति को फॉलो भी नहीं किया आध्यात्मिक प्रोसेस भी फॉलो नहीं किया शास्त्र के द्वारा और केवल नाम जप ले लिया, मन लगे या ना लगे मन एकाग्र हो या ना हो कर्म तो खत्म होंगे, वो तो छोड़िए विश्वनाथ चक्रधर इतना तक बोलते कि उसको नाम लेने मात्र से भगवान के गुण रूप नाम लीला हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। सोचिए इतनी कीर्तन की महिमा बताई गई। बाकी अजामिल तो बोलते हैं ना कि हरि से बड़ा हरि का नाम। कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि हरि नाम और भगवान दोनों एक बराबर है, सही है, हरि नाम और भगवान में अंतर नहीं है, लेकिन हरि से बड़ा इस पर विश्वास चाहिए। लेकिन इसी प्रकार अजामिल के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि अजामिल जो थे किस तरह मरणासन अवस्था में थे, यमदूत लेने आ चुके थे उनको, विष्णुदूत आए उनको बचाने के लिए, उनमें तर्क हुआ काफी। यमदूत बोले कि अरे तो महान पापी है। विष्णुदूत ने कहा कि तुम धर्म को रिप्रेजेंटेटिव करते हो, तुम्हारे जो गुरुजी धर्मराज युधिष्ठिर हैं और तुम्हें धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, कैसे प्रतिनिधि हो तुम? तुम अपने जो स्वामी है उसका अपमान कर रहे हो। और फिर बताते हैं किस तरह इसने पाप तो किए थे, लेकिन इसने एक बार नारायण का नाम ले लिया, उसका फल यह है कि जितने इसके पूर्वजन्म के पाप हैं वहां तुम, वो पिछले 10,000 वर्षों का वर्णन करते हैं वो, कि सारे पापों से मुक्त हो गए। और वहां पे विश्वनाथ चक्रधर टीका में लिखते हैं, प्रभुपाद जी में तात्पर्य में लिखते हैं, कभी कभी कोई ये सोच सकता है कि अजामिल कब मुक्त हुआ? अंतकाल में, क्योंकि उसने अंतकाल में नारायण का नाम लिया। और भी नारायण को तो बुलाया नहीं उसने, वो किसको बुला रहा था? अपने बेटे को बुला रहा था। भगवान तो नारायण उसके चित्त में थे ही नहीं, मतलब नारायण को बुला रहा था बचाने के लिए। डर इतना गया था यमदूत को देखकर, उसने नारायण नाम लिया। अभी देखिए उसने नारायण नाम लिया, तो सोचने वाली बात यह है कि जब उसने नाम लिया तो विष्णुदूत यमदूतों ने भी नारायण का नाम सुना होगा, निश्चित बात है, लेकिन उनका कल्याण नहीं हुआ, लेकिन अजामिल का कल्याण हो गया। तो कभी कभी कोई ये सोच सकता है कि नारायण ने कब नाम लिया? अंतकाल में, लेकिन ऐसा नहीं है। जीव गोस्वामी भी टीका में लिखते हैं कि एक्चुअली में वो अपने पापों से कब मुक्त हो गया था? जब उसने पहली बार नामकरण संस्कार में नारायण नाम रखा था। और प्रभा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि उसे हमेशा के साथ किसी गुरुजी ने उसको बोला होगा, नहीं, अंतर प्रेरणा से, प्रभा जी बोलते हैं अंतर प्रेरणा से हुई कि मेरे बच्चे का नाम नारायण रखा जाए, तब उसने नारायण नाम रखा। और जब उसने नामकरण संस्कार पहली बार नारायण नाम पुकारा था, उसी समय वो जितने उसके पिछले जन्म के पाप थे उससे मुक्त हो गया। और भविष्य में जो पाप उसने किए, हम सब जानते क्या क्या पाप किए उसने, वेश्यावृत्ति सब कुछ किया, लोगों को मारा, उसका कोई फल उसको नहीं आया, इतना भगवत नाम का प्रभाव रहा। तो ऐसा नहीं कि वह अंतकाल में उसने नाम लिया, ऐसा नहीं, फिर बाद में विष्णुदूत वहां से चले गए, क्योंकि उसने इतने पाप किए थे तो उसकी लाइफ एक्सटेंड नहीं होनी थी, जीवन समाप्त होना था, लेकिन चूंकि विष्णुदूत आ गए थे और वो जानते थे कि इसने नारायण का नाम लिया हुआ है, तो फिर लाइफ एक्सटेंड होनी, तो विष्णुदूत चले गए ताकि भगवत भक्ति छोटी पूरी करके भगवत धाम जाए। तो इतनी महिमा है हरिनाम की, अजामिल जैसा महापापी भी केवल एक बार जीवन में नाम लिया, सारे पापों से कर्म से मुक्त हुए और भगवत धाम की प्राप्ति करी, जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि हासिल करी उन्होंने। और विष्णु पुराण में भी यह इस संदर्भ में बात कही जाती है कि कोई महापापी भी क्यों ना, बड़े से बड़ा पापी भी एक बार भी हरि नाम का अगर वो जाप कर लेता है, कितने उसने पाप क्यों ना किए, सारे पापों से उसकी मुक्ति मिल जाती है। पाप मुक्ति तो छोड़िए, पाप करने की जड़ है अविद्या है, वो भी रूट जो जड़ है वो भी समाप्त हो जाती है। फिर चाहे उसने हरि का नाम जानबूझ के लिया हो, अनजाने में लिया हो, हरि नाम की महिमा उसको पता हो या ना पता हो, बेनिफिट तो उसको मिलेगा, लाभ तो उसको जरूर मिलेगा। और प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा एक उपमा देते हैं कि जिस प्रकार आप देखेंगे जंगल में खूब सारे पशु पक्षी जानवर विचरण करते रहते हैं, स्वच्छंद विचरण करते रहते हैं, लेकिन अगर शेर आ जाए तो क्या होता है? शेर की दहाड़ मात्र से जितने जानवर हैं वहां पर, जितने पशु पक्षी हैं, सारे के सारे भागने लगते हैं, एकदम इतने भयभीत होकर भागते हैं। ठीक है, वैसे आदमी कितना पापी क्यों ना, कितने पाप क्यों ना किए हो, प्रभुपाद जी बोलते हैं उदाहरण देते हुए कि उसने एक बार भी हरि का नाम ले लिया, उसके पाप वैसे ही भागते हैं जैसे कि शेर की दहाड़ सुनकर जंगली जानवर भागते हैं। ये हरि नाम की महिमा है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग कितने भाग्यशाली लोग हैं, हम जब चेतन महाप्रभु के मूवमेंट में आए और हमें अवसर मिला। प्रभु तात्पर्य बोलते भी हैं, नाम ना कार्य बहुधा सर्वशक्ति। अरे अष्टांग योग में इतने सारे नियम बताए जा रहे हैं, हमारी पद्धति में चेतन महाप्रभु इतने दयालु, कोई नियम नहीं डाला है, कोई नियम नहीं। सुबह दोपहर शाम खाते उठते बैठते सोचते कभी भी नाम ले लो, भोजन करते समय प्रभुपाद जी बोलते एक निवाला चबा रहो अष्टम हरि मंत्र का जाप कर लो, डॉक्टर के पास जा रहे डॉक्टर ने वेट करा दिया तो हरि नाम का जाप कर लो, सब्जी खरीदने जा रहे तो हरि नाम का जाप करो, सब्जी वाले से भी करवा दो, इतनी सुविधा है हमारी। बस प्रभुपाद जी ने कुछ नियम दिए, नियम का पालन करना है, भगवत धाम गारंटेड है, भौतिक दुखों से निवृत्ति गारंटेड है। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि हम लोग ने इतनी हरि नाम की महिमा सुनी, तालियां भी बजी, हमको सुनने भी काफी अच्छा लगा, ये प्रश्न ये उठ रहा है कि अजामिल तो केवल चार अक्षों का नाम लिया नारायण, तो सारे पाप कर्मों से मुक्त हुआ और भगवत प्राप्ति हुई, विष्णुदूत के दर्शन भी हुए, हम लोग तो इतना बड़ा महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सालों से बोल रहे हैं, 25-25-33 साल भक्तों को जप करते हुए, एकादशी में 64 माला हो रही है, आविर्भाव दिवस त्रिभाव दिवस भी अतिरिक्त मालाएं हो रही हैं, त्योहारों में जन्माष्टमी राधाष्टमी आ रही है, खूब नाम जप कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि भक्त का कष्ट कम होने के बजाय बढ़ने लग जाते हैं। कम से अपने विषय में तो मैं बोल ही सकता हूँ, ऐसा क्यों? हरि नाम की इतनी महिमा है तो भक्त के जीवन, यहाँ तो इतना सब बता रहे हैं, जाजा मिल के सारे कष्ट मुक्त हो गए, हमने इतना सारा गुणगान सुना, लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि सिद्धि तो छोड़िए, अभी जीवन के कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, प्रारब्ध से ही मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इस विषय में कोई कुछ कहना चाहेगा, क्या कारण है? हाँ, माता जी ने बच्चों धारणा दिया, प्रभुपाद जो धारणा देते हैं भक्ति कर रहे हैं, लेकिन पंखा तो ऑफ कर दिया है, स्विच ऑफ होगा लेकिन पंखा भी चल रहा है। तो उसके पीछे मूल कारण ये है, अपराध। जब नाम जप करते हैं तो 10 अपराध हम लोग रोज बोलते हैं, अभी नाम जप करने के पहले हम 10 अपराध का कितना ध्यान रखते हैं उसे हम लोग आपस में ही जानते होंगे कि कितने हम अपराध कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते, कितने बचा पाते हैं। तो यदि नाम जप कर रहे हैं, 10 अपराध कर रहे हैं, विशेष 10 अपराध की चर्चा करेंगे हम, तो जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि 5 तरह के दुष्प्रभाव उस साधक को झेलने पड़ते हैं। साधक नाम जप भी कर रहा है, नाम अपराध भी कर रहा है, तो 5 तरह के दुष्परिणाम उसको झेलने पड़ते हैं। अपने ग्रंथ भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी ने इसे डिटेल में बताया है, मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, समय भी खत्म हो रहा है, संक्षिप्त में चर्चा करूंगा कि सबसे पहला अपराध वो बताते हैं, कुटिलता। यदि कोई साधक नाम जप कर रहा है और अपराध कर दिया तो क्या होगा? उसके हृदय में कुटिलता उत्पन्न हो जाएगी, कुटिलता का अनर्थ उत्पन्न हो जाएगा। कुटिलता का मतलब क्या हुआ? बाहर कुछ और अंदर कुछ और। आइए प्रभु जी, आप बड़े अच्छे प्रवचन दिया आपने, बड़े अच्छे भक्त हैं, आइए स्वागत है आपका, बड़ा स्वागत कर रहे हैं, हृदय के अंदर नकारात्मक भाव है, कहाँ से आ गए, या जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, तो लेकिन सामने तारीफ हो रही है, तो ये लक्षण अपराध की वजह से आते हैं। और जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं दुर्योधन का, कि दुर्योधन जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, शांति दूत का पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव के लिए, तो दुर्योधन को पता चला कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं, वासुदेव जी आ रहे हैं, तो उसने पूरा बड़ा भव्य स्वागत किया, पूरे रास्ते में बड़े बड़े तोरण लगाए, संगीत वंगीत बहुत कुछ, और आलीशान प्रीति भोज का आयोजन किया था, तरह तरह के व्यंजन वर्णन का वर्णन आता है उसमें महाभारत में, खूब सारे उसमें एक बड़ी फिस्ट, बिग मेगा फिस्ट ऑर्गेनाइज की थी, पर बड़ा उसने गुणगान किया, है वासुदेव हमारे घर पे आइए, हमको अनुग्रहित कीजिए, भगवान ने मना कर दिया। क्यों? भगवान जानते थे कि कुटिल है, कुटिलता, मेरे सामने मेरी इतनी प्रशंसा कर रहा है ये, अंदर ये मुझे भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता है। दुर्योधन क्या बोलता था? ये तो ग्वाला है, ऐसा बोलता था दुर्योधन। तो यह अपराध के कारण यदि कोई साधक भक्ति कर रहा है और अपराध भी कर रहा है, नाम जप कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो ये लक्षण कुटिलता का लक्षण उसमें उत्पन्न हो जाता है। और जीव गोस्वामी ये भी बोलते हैं कि देखिए, जो साधक सरल चित्त वाला है वो थोड़ी सी भी भक्ति कर लेगा, थोड़ा भी नाम जप कर लेगा, वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। यदि कोई साधक कुटिल है तो उसको महत कृपा भी नहीं मिलती और भगवत कृपा भी नहीं मिलती, दोनों नहीं मिलता, मतलब मिलती तो है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, कोई नाम जप कर रहा है लेकिन बहुत समय लगेगा, बहुत कठिनाई से, बहुत संघर्ष करके मिलेगी। लेकिन वही साधक सरल चित्त से भगवान का जप कर रहा है, थोड़ा ही नाम जप करेगा, सर्व सिद्धि होए। फिर दूसरा अनर्थ कौन सा उत्पन्न होता है, दूसरी दुष्प्रभाव, नाम जप कर रहा है और अपराध कर रहा है, तो बताते हैं अश्रद्धा। उसके मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, शास्त्रों के प्रति, शास्त्रों के निष्कर्ष के प्रति, भक्तों के प्रति, श्रीमद् भागवतम के प्रति, भगवत सुनेगा भी, भक्तों का संग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, नवदा भक्ति कर रहा है, लेकिन हृदय में श्रद्धा नहीं रहती, अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इस उदाहरण के लिए हम जब पढ़ते हैं वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, युधिष्ठिर महाराज, सॉरी ध्रुव महाराज ने ऐसी तपस्या करी कि अंगूठे पे खड़े हो गए एक पैर के एक अंगूठे पे खड़े हुए, और ऐसा तप किया पूरे ब्रह्मांड में घुटन महसूस होने लगी, सारे जीवों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, यहां तक कि देवी देवता भी घुटन में महसूस होने लगे। तो जब कोई उसके मन में अगर अपराध किया है तो वो उसकी श्रद्धा नहीं आएगी इस बात पर, एक अंगूठे पे खड़े हो गए, ऐसा तप कैसे कोई कर सकता है? पर ब्रह्मांड लगी धरती, बताते हैं वर्णन भागवतम में कि धरती माता भी मतलब हिलने डुलने लगी थी, अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। या जब सुनते हैं कि भगवान राम ने पत्थर पे, समुद्र पे पत्थरों का ब्रिज बनाया, ऐसा कहीं होता है क्या? पत्थर पानी में कहीं तैरता है क्या? ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताते। या भगवान राम जो कि षड ऐश्वर संपूर्ण है, जो सारी सुंदरता के स्रोत हैं, वो भगवान राम ने स्वर्णमर्क को देखा और उनकी सुंदरता से मोहित हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो खुद इतना सुंदर है। लेकिन भक्त समझता है कि लीला में क्या चल रहा है, भगवान इसके पीछे क्या संदेश देना चाह रहे हैं, लीला किस संदर्भ में हो रही है, जो शास्त्रों का अध्ययन करता है अच्छे से, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करता है। लेकिन अगर अपराध करके अपराध किया, अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो सिलसिले में जीव गोस्वामी किसका उदाहरण देते हैं? फिर दुर्योधन का उदाहरण देते हैं। क्या हुआ? जब भगवान श्री कृष्ण राज्यसभा में गए धृतराष्ट्र की, शांति प्रस्ताव दिया उन्होंने, तो भगवान ने कुछ हुआ उनमें, और वो लंबी ही कथा है, उनमें दुर्योधन में कुछ कुछ हुआ, भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया। विश्वरूप दिखाया तो वो विश्वरूप पितामह भीष्म ने भी देखा, गुरु द्रोण ने भी देखा, विदुर महाराज ने भी देखा, वो कृतज्ञ हो गए, भाव विवल हो गए और रोने लगे वो प्रसन्नता के मारे, क्योंकि साक्षात परम ब्रह्म के दर्शन, और वो जानते थे कि ये कृष्ण ही परम ब्रह्म है। दुर्योधन ने क्या बोला? तो ग्वाला है, मायावी है, तो माया है इसकी, इसको बोलते हैं अश्रद्धा। फिर तीसरा दुष्प्रभाव का अन्य भी निवेश, नाम जप कर रहा, अपराध कर रहा है तो क्या होता है उसका? भक्ति तो छोड़ो, भक्ति के साथ दूसरी जो चीजें आती हैं उनमें मन अभिनिवेश हो जाता है। नेम फ्लेम ग्लोरी, सेम ओल्ड स्टोरी। नाम जप करने के पहले अपराध नहीं किया तो पहले क्या था? ना धनम ना जन्दरी, ना जन्म ना सुंदरी। अभी अपराध किया तो क्या हो गया? हाँ धनम, हाँ जन्म, हाँ सुंदरी। भक्ति का पद पोस्ट प्रतिष्ठा जो सुविधाएं मिल रही है, मन वहां निवेश हो जाएगा, और जिस पर्पस के लिए घर छोड़ा, जिसके लिए भक्ति करने है, वो साइड में हो जाएगा। इसे बोलते हैं अन्य भी निवेश। उदाहरण देते हैं किसका? वो जड़ भरत का, जीव गोस्वामी। मेरे भी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी सोचने वाली बात है, महाराज भरत ने सारा संसार, पूरे धरती के राजा थे वो, विरक्त थे वो, तभी पूरा घर परिवार राजपाट छोड़ के जंगल में गए थे वो, सब कुछ छोड़ा उन्होंने, पूरा सुख छोड़ा, राज्य सुख छोड़ा, धन धान सब छोड़ा उन्होंने। ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटे से मृक्ष शावक से वो आसक्त हो जाए? संभव ही नहीं है। तो पूर्ण विरक्त थे, एकदम 100% विरक्त थे, कैसे आसक्त हो गए? मन हमारे प्रश्न, हमारे मन में भी प्रश्न था, कभी कभी आता था, लेकिन ये जीव गोस्वामी ने क्लियर किया। उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म का कोई अपराध था जिसकी वजह से वो मृक्ष शावक से आसक्त हुए। उसी प्रकार चौथा है भक्ति शैथिल्यम। अपराध किया तो भक्ति में सुख मिलते हैं या भक्ति में दुख भी मिलते हैं, तो भक्त सुख दुख में निष्ठा इतनी हो जाती है कि भक्ति में शिथिलता आ जाती है, सुस्ती आ जाती है। और आज नहीं जाएंगे, मंगल आरती छोड़ो, रोजी तो जा रहे 10 साल तो हो गए, जाते जाते क्या करेंगे, जाएंगे चलता है, कौन से निगाह भागवतम क्लास, वैसे ही वह प्रवचन प्रभु जी कुछ बोलते तो इन्हें सुनने मजा तो आता नहीं है यार, तो छोड़ो, शिथिलता आ जाती है। अपराध, शिथिलता जो आती है उसका कारण जीव समय बताते हैं, कारण है अपराध होना। इसमें उदाहरण देते हैं गजेंद्र जी का। गजेंद्र जी अपने पूर्वजन्म में कौन थे? राजा इंद्रदुम्न। लंबी है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, समय हो रहा है। दो उदाहरण देते हैं, राजा शतधनु का और राजा इंद्रदुम्न का। इंद्रदुम्न ने क्या किया? जब कर रहे, तपस्या कर रहे थे, अगस्त मुनि आ गए, तो उन्होंने अगस्त मुनि का उन्होंने सत्कार नहीं किया। इतनी सी बात थी बस। अभी हमारी प्रा से पूछते तरण रपी सुनिचो ने तरो रपी सुना, अमान नहीं ना मान देना, सारा मान दूसरों को देना, अपने लिए मान रखना ही नहीं है। अगस्त मुनि को इतना क्रोध आ गया, इतनी छोटी सी बात उन्होंने को इसको मानसिक कुछ बोला नहीं था उनको, उनको बस बस उन्हें पता था कि आ गए, बस वो खोले नहीं आके, इतना ही किया था। इतना बड़ा श्राप दे दिया उनको, तुम हाथी बन जाओ, इतना सम्मान की इच्छा हुई अगस्त मुनि को, तो ऐसा नहीं है। जीव गोस्वामी बताते हैं टीका में कि अगस्त मुनि ने यह सोचा कि एक तो गृहस्थ है, इनको वन में आना नहीं चाहिए, घर पर परी छोड़ दिया, राज परिवार की जिम्मेदारी छोड़ के आप जप कर रहे हैं। दूसरा, जीव गोस्वामी बताते हैं कि वो पहले भी कई बार कर चुके थे, लोग वैष्णवों को नेग्लेक्ट कर देते, जैसे कि कहां पर विष्णु धर्म में कहीं तो भी है कि यदि वैष्णव को देख के अगवाने के लिए नहीं गए तो अपराध माना जाता है। तो अगस्त मुनि ने करुणावश कि आगे भी वैष्णव के प्रति अपराध करें, उससे बचाने के लिए श्राप दिया, तुम शिथिल शरीर में स्वच्छ शरीर में चले आओ और हाथी बन जाओ, और ये भी जानते थे कि उनका उद्धार हो जाएगा। तो शतधनु का उदाहरण देते हैं, वो विष्णु पुराण में वो कथा है, वो बहुत बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वो पति पत्नी दोनों शतधनु राजा बहुत महाभागवत थे, वो बहुत उच्च कोटि के महाभागवत तो नहीं, उच्च कोटि के भक्त थे, पति पत्नी थे, कार्तिक पूर्णिमा थी, गंगा जी में स्नान करके बाहर आ रहे थे, वहां से एक पाखंडी ब्राह्मण आ रहा था, पत्नी ने ध्यान नहीं दिया, वो सूर्यदेव को जल देने लगी, लेकिन इन्होंने जो राजा शतधनु थे इन्होंने उससे जाके अपना समय दिया, क्योंकि वो उनके धनुर्वदाचार्य का मित्र था, थोड़ी सी बातचीत करी थी उन्होंने, संभाषण किया, वार्तालाप हुआ, क्या परिणाम हुआ उसका? उनको अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ा, तुरंत उनकी मृत्यु कुत्ता बन गए, फिर वो सिया भेड़िया बने और फिर जाके वो गधे बने, फिर उनकी पत्नी ने उनका उद्धार किया, विष्णु पुराण में पूरी कथा है। क्यों? अपराध किया। कौन सा अपराध? नवा अपराध, अश्रद्धालु को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। फिर आता है भक्ति का अभिमाना। कभी कभी साधक भक्ति करता तो मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, आई एम ए वेरी गुड डिवोटी, आई एम बेटर देन अदर्स, मैं दूसरों से बहुत अच्छा हूँ। तो भक्ति का कभी कभी अभिमान आ जाता है, वो भी अपराध के कारण। जब अभिमान के कारण अपराध के कारण अभिमान आता है, भक्तिगत अभिमान। तो किसका उदाहरण देते हैं, दक्ष का। दक्ष का अभिमान था तो उसने क्या किया, शिवजी का भी अपराध किया, नारद मुनि का भी अपराध किया। तो इस तरीके से ये पूरी चर्चा में समझ में आती है, हरिनाम महान जरूर है, अष्टांग योग से काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमको उसके दूसरे जो पहलू हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए और अपने आप को नाम जप से बचाना चाहिए। अब इस अध्याय के 72वें श्लोक, नारद मुनि ने भी अपराध किया एक बार, इसे 72वें श्लोक में आएगा। यहाँ पर नारद मुनि बताएंगे कि दासी पुत्र से पहले वो क्या थे, गंधर्व थे, क्या नाम था, उपहरण करके नाम था उनका, उपभ्रमण करके नाम था उनका, लेकिन वो गंधर्व थे, बहुत सुंदर थे, बहुत बहुत सुंदर, और बहुत अच्छा गायन भी करते थे। इतने सुंदर गायन थे कि अप्सराएं उनको देख के आकर्षित होती थी, मोहित हो जाती थी, तो अपना श्रृंगार फूलों से तिलक से श्रृंगार करते थे कि महिलाएं आकर्षित हों, अप्सराएं आकर्षित हों। तो एक बार प्रजापति ने कार्यक्रम रखा, फेस्टिवल रखा, क्या रखा, हरिनाम फेस्टिवल। सब लोगों को बुलाया, गंधर्व भी बुलाया, चरण सिद्ध सबको बुलाया, ये भी गए। वहां जाकर उन्होंने क्या किया, कीर्तन तो नहीं किया, देवताओं का गुणगान कर दिया। प्रजापति नाराज होकर ने श्राप भी दिया कि तुमने शूद्र का काम किया है। क्या गलती करी, एक कि कामुक महिलाओं को लेकर गए, दूसरा देवी देवताओं का गुणगान करते, भी गुणगान होता परम प्रभु परमेश्वर का, कीर्तन का गुणगान होता। अब तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि काली कीर्तन या दूसरा जो कीर्तन है उनको रिकमेंडेड नहीं, कीर्तन आना भगवान का कीर्तन, ना प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए कि हम लोग जिस पथ पर आए, पथ तो बड़ा आसान है, बहुत लाभदायक है, बस हमको एक अपराध से बचना है तो हमारी सर्व सिद्धि हासिल है। अपराध से कैसे बचे, अपराध हो रहे हैं, नाम जप करते रहें, बढ़ाते रहें इंटेंसिटी से करते रहें, नाम जप सबसे उद्धार कर देगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सभी का ध्यान प्रसन्न का बहुत बहुत धन्यवाद।